ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं श्रगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध का अध्याय 29 पढ़ेंगे। इसमें भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या अध्याय है और श्लोक 23 पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप दुहराइए।
द्विशतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य। न मनः शान्तिं रिक्षति द्विशतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य। न मनः शान्तिं रिक्षति
द्विशतः परकाये माम् मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृक्षति द्विशतः परकाये माम् मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृक्षति द्विशतः द्वेष रखने वाले का पर काये दूसरे के शरीर के प्रति माम मुझको मानिनः आदर करते हुए भिन्न दर्शिनः पृथकवादी का भूतेषु जीवों के प्रति बद्ध वैरस्य शत्रुता रखने वाले का ना नहीं मनः मन शांतिम शांति रिक्षति प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है वह इस कारण पृथकवादी पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्विशतः परकाये अन्य के शरीर से ईर्ष्यालु ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति देश भाव शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं हो रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए, उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति की दृष्टि है भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएं और उन्हें कृष्ण भावनामृत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निस्संदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं है, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य भिन्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते का प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरण करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भवबंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पतियों में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो ऐसा तो क्या हिंसा नहीं है, किंतु पहले तो यह कि वृक्ष से कुछ पत्तियां टहनियां या फल तोड़ लेने से वह वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है कि चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसे अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही क्षुद्र क्यों न हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित हैं। भक्त को भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। दिशतः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृक्षति। अनुवाद है, जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, वह इस कारण पृथक्तावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। आपको जानते हैं, इस अध्याय के प्रारंभ में माता देहूति ने भगवान से, भगवान कपिल देव से प्रश्न किया है और उसी प्रश्न का भगवान कपिल देव उत्तर दे रहे हैं। तो उस प्रश्नों में एक प्रश्न था, भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरतः प्रभो। आप भक्ति योग का, भक्ति योगस्य मे मार्गम, भक्ति योग का जो मार्ग है, पद्धति है, उसका विस्तार से हमको वर्णन कीजिए। यह उनका भक्ति योग का और भी प्रश्न है, लेकिन भक्ति योगस्य, भक्ति योग का जो मार्ग है, कैसे हम भगवान की भक्ति पर बढ़ना है, उसका विस्तार से आप वर्णन कीजिए। देहूति जी ने यह प्रश्न पूछा है भगवान कपिल देव से, अपने पुत्र से। तो और भी प्रश्नों के साथ इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व के श्लोकों में वर्णन किया गया है भक्ति की। ऐसे तो भक्ति एक ही भक्ति है, लेकिन साधना, साधक की दृष्टिकोण से उसमें भिन्नता आ जाती है। विशेषकर भक्ति का वर्गीकरण किया गया है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति का एक आगे चैप्टर ही, अध्याय है। तो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति से मतलब उसमें कुछ कामना है। निर्गुण भक्ति अच्छी है, केवल भगवान के प्रेम के लिए जो भक्ति की जाती है उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति। लेकिन सगुण भक्ति है कि भक्ति करते हैं, कुछ कामनाएं रहती हैं, भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो उसे सगुण भक्ति का। तो सगुण भक्ति का इसमें विस्तार से भगवान, सगुण भक्ति का नहीं, भक्त जो उनकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो भक्तों की कटघरी है, उसके अनुसार भक्ति बदलती है। तो कुल मिलकर निर्गुण भक्ति के ये तीन गुण है, जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इससे प्रभावित होकर के तीन प्रकार की भक्ति पहले बताए, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके नौ प्रकार की भक्ति है, और फिर नौ से गुणा कर देने पर सगुण भक्ति 81 प्रकार की होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति एक प्रकार की होती है, केवल एक प्रकार, उसमें बहुत भेद नहीं है। उसमें किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, भौतिक कोई इच्छा नहीं रहती, केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहे। तो पीछे के श्लोकों में भगवान यह वर्णन करके निर्गुण भक्ति का भी निरूपण किए हैं एक दो श्लोकों में, लेकिन यथार्थ रूप में एक दो अध्याय के बाद निर्गुण भक्ति का बढ़िया से सम्यक विवरण किया गया है। इसमें जो विशेषकर जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति को अशुद्ध भक्ति हम नहीं कहेंगे, इतना ही कह देंगे शुद्ध भक्ति नहीं। तो भगवान एक बात कहते हैं कि भक्ति करते समय एक ज्ञान की जरूरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि अहम सर्वेषु भूतेषु आत्मा वस्तम सदा। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूता भूतात्म अवस्थिता सद, निरंतर भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि जीव भी भगवान का अंश है, तो अपने अंश रूप से जीवात्मा के रूप में भगवान है और अपने भगवान रूप से परमात्मा के रूप से हैं, तो दोनों रूपों से हैं। एक तो जीवात्मा है, भगवान का अंश है, तो एक दृष्टि से भगवान ही निवास करते हैं अपने अंश रूप में, और दूसरा परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो हमको प्रत्येक व्यक्ति को जो हम भक्ति करते हैं, किसी प्रकार की भक्ति करते हैं, और विशेषकर यहाँ पर चर्चा आई है अर्चा विग्रह की आराधना, स्त्री विग्रह की आराधना। भगवान सभी प्राणियों के अंदर हैं, सभी भूतों के अंदर हैं, तो भगवान का जो स्त्री विग्रह बनाया जाता है उसमें भगवान है, सभी भूतों में है तो उस स्त्री विग्रह में भी है। तो कुछ लोग ऐसी भक्ति तो करते हैं, स्त्री विग्रह की आराधना करते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता होती है कि पत्थर का चाहे धातु की मूर्ति बनी हुई है और सभी लोग पूजा करते हैं, एक विधि है, हम भी उपचार के लिए पूजा करते हैं, उतनी श्रद्धा नहीं होती कि इसमें स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है इसमें, अब उतनी श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन उच्ची भक्ति है, फिर भी श्री विग्रह की आराधना करते हैं, तो वह करना चाहिए। और दूसरी बात है कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास जब करते हैं तो श्री विग्रह की हमें बढ़िया से आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना है भगवान के सामने, कीर्तन करना है, श्री विग्रह की आराधना है। परंतु इसके साथ यह भी, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मन ईश्वरम, यह भी जानना चाहिए कि मैं, भगवान कहते हैं, भगवान कपिल देव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं परमात्मा रूप से अथवा अपने अंश जीवात्मा रूप से। तो जो व्यक्ति मूर्खतावश भक्ति तो करता है, बढ़िया से भगवान की आराधना करता है, लेकिन मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, मुझको अथवा किसी भी जीव को तिरस्कार करता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो वह पूजा वैसे ही है जैसे राख में आहुति देना। राख समझते हैं, जब हम लोग वैदिक मंत्र पढ़ते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है फ्लेम के सहित और उसमें हम आहुति डालते हैं मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ, तो भगवान का मुंह है, उसे भगवान ग्रहण करते हैं। तो जो फ्लेम होता है भगवान की, वह जिह्वा है, उस पर डालते हैं तो भगवान को मिलता है। लेकिन अग्नि नहीं है तो चाहे आप मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं तो भगवान को नहीं मिलता है। तो हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्री विग्रह की आराधना करते हैं, लेकिन सभी प्राणियों के हृदय में भगवान है, उनको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी समादर नहीं करते हैं, तो वह भस्मनी एव जुह्यति, तो हवन कैसा है जो राख में, जिस आग नहीं है तो प्रज्वलित नहीं होगी। और यह श्लोक है, इसमें भगवान थोड़ा और गंभीर बातें कहते हैं। पहले तो है कि दूसरे प्राणियों को हम लोग सम्मान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए, वह तो खतरनाक है ही, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि दिशतः पर काये माम, भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के देह में निवास करता हूं, लेकिन कोई प्राणी से, जीव से द्रोह करता है और मुझको खूब बढ़िया से पूजा करता है, तो भूतेषु, और हाँ एक बात, दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है और दूसरों के शरीर से द्वेष करता है, उसको नष्ट करता है, तो वह न मनः शांति मिरिक्षति, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान कहते हैं, है ना, न मन शांति वृक्षति मैंने प्राप्त कर। जो व्यक्ति भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है वो निवास करते हैं, लेकिन जो जीवों का सम्मानदर नहीं करता है, आदर नहीं करता, सम दृष्टि से नहीं देखता, उसमें भेदभाव करता, भिन्न दर्शन, किसी को बड़ा मानता है, किसी को छोटा मानता है, नहीं देखता है परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में, तो उसे भगवान यहाँ एक तरह से श्राप दे रहे हैं। कपिल देव श्राप ही कहते हैं ना, कोई कह दिया आपको मन की शांति नहीं मिलेगी तो बड़ी भारी हानि हो गई। न मन शांति मृक्षति, वह कभी भी व्यक्ति वो मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकता है जो दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है। द्विशतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शी, अभिमान वश भिन्न दर्शी है तो भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो जीवों के प्रति वैर रखता है, इनवियस रखता है, उनका हानि करता है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में यह बात बार बार कही गई है कि हमें भूल कर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। हिंसा का केवल मार देना ही हिंसा नहीं है, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार का दूसरे प्राणियों को सताना नहीं चाहिए, उसे दुख नहीं देना चाहिए। आप जानते होंगे एक उपदेश है सुनीति का ध्रुव महाराज के प्रति। ध्रुव महाराज का थोड़ा अपमान हुआ, कथानक से आप परिचित हैं, उनकी सौतेली माँ ने उनको इंसल्ट किया, पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया, तो ध्रुव महाराज के हृदय में अपनी माँ के प्रति, अपने पिताजी के प्रति बहुत आक्रोश था। जब इस आक्रोश को पता लगा उनकी माँ को, सुनीति को, तो उसने उनसे एक तो उपदेश दिया, मामंगलम तात परेश मंसा भुक्ते जनो यत प्रदुख दस्त। मैं कहे कि बेटा तुमको कभी भी दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, तुम अभी द्वेष कर रहे हो अपनी माँ से, सौतेली माँ से, अथवा अपने पिताजी से, अथवा प्रकारांतर से अपने भाई से, उत्तम कुमार से, उत्तम से द्वेष कर रहे हो, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को सुख अथवा दुख हमको प्राप्त हुआ है, वह कैसे प्राप्त होता है, हमें दुख क्यों प्राप्त होता है अथवा सुख क्यों प्राप्त होता है, तो जितना हम किसी को सुख दिए हैं वही हमको मिलता है। ऐसा सुख प्राप्त करने का उपाय कुछ नहीं है, आप सुखी होना चाहते हैं तो क्या होता, उतना सुख किसी को दीजिए तो उतना ही सुख हमारे डायरेक्शन में आएगा, हमारे दिशा में आएगा। उसी तरह हम जितना किसी को दुख देते हैं तो वही दुख ही हमारे पास आता है, तो हमको वही प्राप्त होता है जो हमने जीवन में किसी को दिया है। आप जो कुछ दिए हैं आपको वही मिलेगा। तो यत पर दुख रस ततः, हम लोग जो दूसरे को दुख देते हैं वही हमको मिलता है। यह समझ, यह बात को गंभीरता से समझ, हमको क्या मिलता है जो हमने किसी को दिया है। जब हमको सुख दिया है तो हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। हमको दुख दिया है तो हमको दुख मिलेगा। जो हम लोग देते हैं वही हमको मिलता है, और कुछ नहीं हमको, हमारे जो आपने दिया है वही आपको मिलता है। तो वो बच्चे को, छोटे से बच्चे को समझाना चाहती थी सुनीति कि बेटा तुमको जो दुख मिल रहा है, तुम दुखी हो, तुम्हारा, तुम फील करो तुम्हारा इंसल्ट किया गया, अपमान किया गया, इस जन्म में तो नहीं, पूर्व जन्म से, पूर्व से पूर्व जन्म में तुमने किसी को दुख दिया होगा, और अब फिर वह मत सोचो। एक बार तो कही तुमने दुख दिया तो तुमको मिल गया, और फिर किसी को दुख देने को सोच रहे हो, अपने पिताजी को, अपने माँ को, अथवा अपने छोटे भाई को, भाई के प्रति तो ज्यादा आक्रोश नहीं था, ज्यादा आक्रोश माताजी के प्रति था, और उससे थोड़ा सा कम पिता के प्रति। तब उनको जब तुम दुख दोगे, तुम जो दोगे वही मिलेगा, इसलिए तुम मां मंगलम तात परिसमस, इसलिए मन से भी किसी को दुख देने की बात मत सोचो, नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वही तुमको मिलेगा। यहाँ वसुदेव जी जब समझा रहे थे कंस को, तो आपने कृष्ण बुक में थोड़ा सा पढ़ लिया होगा ना, भगवान के अवतार की कथा थी। जब कंस मारने चला देवकी को, पकड़ लिया, काटने जा रहा था रथ पर, विवाह के दिन ही था, एक दो दिन बाद जब विदा के समय ही, तो उसको समझाने के लिए एक बात वसुदेव जी ने कहा है कि तस्मात न कश्चित द्रोहम आचरे स तथा विदत। किसी भी व्यक्ति को दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए। आत्मन क्षेम मिक्षण, यदि किसी की इच्छा है, अपना भलाई चाहता है, हम चाहते हैं कि हम ठीक से रहें, अपनी भलाई रहे, तो उस व्यक्ति को दूसरों से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग द्रोह करेंगे तो बस जो हम द्रोह करें तो हमारे पास आ जाएगा। वो यह कहना चाहते थे कि आप देवकी को मारना चाहते हैं, इसे द्रोह कर रहे हैं, तो इसका फल आप यह करने से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपको जीवन भर भय रहेगा। यदि कोई किसी को सताता है, किसी को दुख दिया है, वह कभी भी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा दुग्धुम वय परतु भयम, जो किसी से द्रोह करता है, किसी से इनभियस है, किसी के प्रति झगड़ा करता है, तो हमेशा उसके मन में उससे भय बना रहता है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका भी द्रोह होता है, किसी से हम द्रोह करते हैं, तो हमारे मन में एक बेचैनी रहेगी हमेशा, क्योंकि हमने किया। तो वो कह दुग्धुम वय, निश्चित रूप से वसुदेव जी कहते हैं कि द्रोह करने वाले का, दूसरों को सताने वाले का, दूसरों की हिंसा करने वाले को परतः हमेशा भय बना रहता है। भले वो प्रतिफलित भी कभी नहीं होता है, लेकिन हमें शंका होती रहती है कि वह हमको दुख देगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि दुष्टः परकाय माम, मानि भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति। शांति से कोई, हम किसी से द्रोह किए हैं, किसी से बैर किए हैं, किसी का अपकार किए हैं, तो हम कभी भी शांति से सो नहीं सकते हैं, हमको भय बना रहेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य, यह मनुष्य की बात नहीं है, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना है। तो एक श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, मनुष्य के तो हृदय में निवास करते ही हैं, इसके अन्य प्राणियों के, तो दूसरों को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में शिवानंद सेन, चैतन्य चरितामृत में शिवानंद सेन जी की कथा है, जब भक्त लोग नवद्वीप से, मायापुर से प्रतिवर्ष जाते थे मिलने चैतन्य महाप्रभु के पास, विशेषकर रथ यात्रा के समय भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए, बहुत से सैकड़ों हजारों हजारों भक्त जाते थे। एक बार वो चल रहे थे तो एक कुत्ता पीछे चल दिया। कुत्ते कभी कभी पीछे चल देते हैं, जानते हैं ना, ऐसे पता नहीं उनका स्वभाव होता है, किसी के पीछे चल देते हैं। तो वो लोग भी भीड़ चल रहा था तो उसके साथ चल दिया। तो जब कोई भी प्रसाद हम भक्त लोग जाते हैं तो कुछ खाएं पियेंगे तो कुछ मिल जाता था, खा लेता था, एकदम चल ही दिया। वो भी चल दिया तो एक जगह क्या बात आई, ऐसे तो अपने पैर से चल रहा है और भक्त लोग प्रसाद खाते थे तो देते थे, शिवानंद देते, खाता था, चलता था, समस्या। लेकिन एक जगह नौका पर पार करना था, नौका पार करना था, बड़ी नौ, बड़ी कोई नदी होगी, तो लोग तो नौका पर चढ़ गए, कुत्ता कहाँ चढ़ेगा, ऐसे पैदल तो चढ़ा था, कोई समस्या नहीं, तो नौका उस पर कर। और वह इंसिस्ट करता, नाविक को नहीं चाहता था, ऐसे कुत्ते भी बड़े नौका होता चढ़ जाते हैं, थोड़ा हेल्प करने पर, बुलाने पर चढ़ जाते हैं, पार कर। लेकिन वो तो नाविक था, वो अरे हमारे नाव पर कुत्ता क्यों चढ़ेगा, अब ये तो पे नहीं करेगा, कौन पे करेगा, वो तो पैसा देने वाला है, तो चाहते हैं, गिनते हैं कितना आदमी है, तो उसके 5 रुपया चाहे 7 रुपया जितना का उड़ा लेते हैं, उसको कौन देगा। तो नहीं चाहता था, एक तो अपवित्र पशु है मनुष्यों के साथ बैठेगा, और दूसरे उसका पैसा नहीं मिलेगा, भाड़ा नहीं मिलेगा, किराया नहीं मिलेगा। तो इस बात को शिवानंदी जान गए तो उन्होंने उसको पैसा दे दिया, भाई चलो एक आदमी इसको भी गिन लो, 10 भक्त हैं तो 11 हमारे अभी है, इसको चल। तो उसको अच्छा, वो साथ साथ गया, लेकिन फिर भी यह बात थी कि कुत्ते का इतना साथ में भक्तों के साथ बैठना ऐसे इधर, अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगा। तो वह कुत्ता अंत में देखा गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया था, और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से वो नारियल का अंतर होता, क्या कहते हैं, मलाई, मलाई कहते हैं ना, पानी तो पी जाते हैं, फाड़ कर देते हैं, खरोचते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको मलाई डाल दिया। और भगवान चैतन्य राम कृष्ण हरि, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे उस कुत्ते से कि बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। महाराष्ट्र में यही मंत्र तुकाराम जी के लोग बोलते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि। तो उसको यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वह कहते हैं कि देखिए शिवानंद सेन जैसा भक्त, एक भक्त में कुत्ते में अंतर नहीं देखे। वो जानते हो भी उस परमात्मा और उसके हृदय में उसके ही भगवान है, भगवान उसके हृदय में, तो सम व्यवहार, तो भक्त को सम व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, उसके शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइकिल है, 84 लाख प्रकार की जोनियां है, वह उससे गुजर रहा है कोई प्राणी, तो उसको अन्य से शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी में श्रील प्रभुपाद जी एक हिंसा की जो बात आती है, किसी प्राणी को हिंसा करना, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के प्रश्न उठाते हैं कि आप कहते हैं कि किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, उसके शरीर से द्रोह नहीं करना चाहिए, तो पेड़ पौधे हैं, शाक सब्जी है, उसमें भी तो परमात्मा रूप से भगवान है, अथवा जीवात्मा रूप से जीव उसमें है, तो हम लोग खाते हैं, साग खाते हैं, वो खाते हैं ना, फल खाते हैं, तो इसमें तो हिंसा है। आप साग खाते काट कर खा गए तो मार ही दिए ना, या फल तोड़ कर खा लिए। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि उचित ढंग से व्यवहार करने पर उस जीव को कष्ट नहीं होता है। यदि आप फल लगा हुआ है, फल तोड़ते हैं, पका हुआ फल पक जाता है, तोड़ते हैं, तो पेड़ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तुलसी जी हैं, तुलसी जी का पत्ता आप तोड़ते हैं, तो तुलसी जी का मंजरी आपसे तोड़ लेते हैं, तो यह तुलसी जी को कष्ट नहीं होता है, उससे थोड़ा सा सुख होता है पेड़ पौधों को भी। जैसे बाल भी हमारे साथ है, कोई सेविंग करता है तो अच्छा ही लगता है ना, अपने से जाकर सेविंग करा दे, पैसा देकर करा दे, तो हमारे बाल काटने से हमको कष्ट नहीं होता है। तो जो पेड़ है उसमें जो फल लगा हुआ है उसको आप तोड़ लेते हैं, या पत्तियों को भी तोड़ते हैं, तुलसी जी को तोड़ते हैं, तुलसी जी को कष्ट नहीं होता है। यह ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर है, जैसे हम लोगों के बाल काटने से हमें कोई कष्ट नहीं होता है, घंघ दूसरा हाथ काट देंगे तो दुख होगा, लेकिन कोई बाल काट देगा तो नहीं फूकता है। तो ऐसे और कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जो उतना ही आयु उनकी होती है, गेहूं है एक बार जमा वनस्पति है, जितना पक जाता है इसके बाद उसको दाना लेकर खाते हैं, तो उसमें यह हिंसा नहीं है। और भगवान ने, भगवान की ऐसा व्यवस्था है कि एक प्राणी का देह दूसरे प्राणी के लिए भोजन होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, भगवान ये ऐसी व्यवस्था किए हैं, यही सब कुछ किए हैं। अब पालन पोषण ऐसी व्यवस्था कर ली है कि यहीं से एक दूसरे से पालन हो जाता है, एक जीव को शरीर को खाकर दूसरा जीव भोजन की, अलग भगवान को किचन की व्यवस्था नहीं कि बनाए क्या दे दिया प्राणी, तो वो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार हम चलते हैं। यदि कोई बाघ है किसी प्राणी को, हरिण को मारकर खा जाता है, तो उस पर हिंसा का दोष नहीं लगता है, भगवान ने उसे कोटा निर्धारित किया, उसे भोजन नेचुरल भोजन दिया है। तो जो मनुष्य है तो हम लोगों के लिए भगवान ने निर्धारित किया है कोटा, हम लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो जहाँ तक साग सब्जी है उसमें चेतना का उतना विकास नहीं है, यदि हम उसको खाते हैं तो वह दोषपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर ही बात भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना, दुष्टता हमने द्वेष करना, ईर्ष्या करना, न तो किसी प्राणी से और न तो उसके शरीर से। द्विषतः पर काये माम मानिनु भिन्न दर्शिन भूतेषु बद्ध वैरस्य, इनवियस नहीं होना चाहिए। यदि हम शांति चाहते हैं तब, क्योंकि यदि हमको कष्ट, हम किसी को कष्ट देंगे तो हम उसे बच नहीं सकते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह कर्म का सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा, शुभ अथवा अशुभ हमने जो कर्म किया है उसको हमें अवॉइड नहीं कर सकते, हमको मिलेगा ही मिलेगा ही। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य हमने यदि किसी को दुख दिया है तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उसी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शुभ अथवा अशुभ यदि हमने कर्म किया है, ये अशुभ कर्म है, किसी को दुख दिया है तो हमें भी वह दुख मिलेगा। किसी भी भौतिक विधि से भौतिक साधन से उसको टाला नहीं जा सकता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि न मन शांति, उसे शांति नहीं मिल सकती है। एक ही यदि भूल से हमको रियलाइज हो गया कि हमसे कोई अपराध हो गया है, हमसे कोई पाप हो गया है, तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण में जाने पर भक्ति करने से वह कट सकता है कि हमने हो गया है। ऐसा नहीं कि अब कट सकता है तो आगे भी करेंगे, हमसे भूल से चाहे पूर्व जन्म से पहले कुछ हो गया है तो उसे भक्ति के द्वारा काटा जा सकता है। ब्रह्म संहिता में आई है ना, कैसे है? आहो कैसे सुर वाला यस्तेंद्र अस्पेंद्र गोप मथवेंद्र महोत्कर्म बद्धान रूप भल फल भाजन माप्तनोति कर्माणि निर्दहतु किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तमहम। कर्माणि निर्दहतु किंतु च भक्ति भाजाम कर्माणि कर्म कर्माणि जितने निर्दय होते भक्ति भक्ति करने से नष्ट होता है। अन्य किसी भी साधन से वो हमने कष्ट दिया है तो वो मिटेगा नहीं। तो प्रायश्चित रूप से यदि हमसे कुछ हो गया है तो उसके लिए भक्ति के द्वारा काटा जा सकता, अन्यथा वो रहेगा। और भक्त का ऐसा स्वभाव होता है, प्रायः इस विषय में बड़े कंजूस होते हैं, भक्ति खर्च नहीं करना चाहते हैं काटने के लिए। किसी से हुआ है तो उन्हें सोचते हैं भक्ति उसमें से उसे कर, भक्ति करते हैं उसे तो संजोग कर रखना होता है, भक्ति से कर्णफल को काटने का प्रयास नहीं करते हैं। प्राय प्रतीक्षा करते रहे अपने वो भोग सुख दुख भोग लेते हैं, एक भक्ति को सुरक्षित रखते हैं, भक्ति का उपयोग खर्च नहीं करते हैं कर्मफल को काटने के लिए, शुद्ध भक्त होते हैं। तो यहाँ पर यह बात है, वह एक विधा है तो हमसे पूर्व जन्म में जाने अनजाने में कुछ हो गया है तो उसको, अन्यथा यह एकदम निश्चित सिद्धांत है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ हमने जो कर्म किया है तो हमें इसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी भूल कर भी स्वप्न में भी हमें किसी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए, द्विषतः द्वेष नहीं करना चाहिए और बैर नहीं रखना चाहिए, इम्यूनिटी नहीं कायम रखना चाहिए। यहाँ पर सभी प्राणियों के प्रति सम होना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे जो जीव हैं मनुष्यों के अतिरिक्त जो जीव हैं डायरेक्ट तो उनमें भक्ति का थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी उच्चतर स्तर पर लाया जा सकता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी प्रसादम वितरण की बात कहते हैं, भगवान को अर्पित करके प्रसादम यदि किसी प्राणी को दिया जाता है, जीव को दिया जाता है, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों को भी, तो उस प्रसादम के प्रभाव से, भगवत कृष्ण प्रसादम के प्रभाव से उसका भी स्तर उठ जाता है, वह उच्चतर लेवल पर भक्ति के लेवल पर लाया जा सकता है। तो उपदेश रूप से यहाँ भगवान कहते हैं कि हमें भूल कर भी कभी भी किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। यह जानना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक हैं, किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब भगवान यह कहते हैं कि मुझ प्रकारांतर से मुझसे ही द्रोह कर रहा है। यो माम सर्वभूतेषु संतम, किसी से प्राणी से आप द्रोह कर रहे हैं मतलब कि मैं उसके हृदय में निवास करता हूं तो प्रकारांतर से मुझसे ही द्रोह है, मुझसे ही द्रोह है। यह समझे कि हम भगवान को पूजा कर रहे हैं और दूसरे प्राणी को सता रहे हैं तो वह उसके साथ जो द्रोह है, प्राणी के साथ द्रोह है, वो मेरे साथ द्रोह है। इसे पूर्व श्लोक में कहा, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ और कोई दूसरे से प्राणी से द्रोह करता है, भगवान कहते हैं कि वो प्रकारांतर से मुझको ही मैं से द्रोह करता है और उसकी सेवा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। दूसरे प्राणी से द्रोह करता है, शत्रुता करता है, सताता है और मेरी पूजा करता है तो हितार्चा भयते मोढ़ मूर्खतावश तो भस्मनी एवं जुहेती, मैं उस सेवा को स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक हमको भक्ति करना चाहिए। और इस श्लोक में विशेषकर किसी भी प्राणी से कभी भी स्वप्न में भी द्रोह नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग द्रोह करेंगे तो हमारे हृदय में हमेशा शंका भय बना रहेगा और हमें कभी भी न मनः शांति मृक्षति, हम कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एकदम श्लोक न मतलब नहीं, मनः मन मन की शांति मन शांति मृक्षति प्राप्त करो कभी भी नहीं सर। एक तरह से भगवान जिसे श्राप जैसा दे रहे हैं तो हम लोग क्यों वो रिस्क लें, खतरा लें कि द्रोह ही नहीं करना है, तब किसी प्राणी से द्रोह नहीं करते। एक श्लोक में कहा गया है, आप लोग उसे पढ़े होंगे, भगवान कहे हैं कि तब कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं अपने से श्रेष्ठ लोग हैं उनको आदर करना है। आप लोग पढ़े होंगे ना श्लोक, कौन सा हमें, महताम बहुमानेन, 17 श्लोक है। महताम बहुमानेन, जो श्रेष्ठ हैं उसको खूब सम्मान देना है। दीना नाम अनुकंपया, और आपसे जो गुण में अवस्था में धन में सामाजिक दृष्टिकोण से कम है उसको क्या करना है, उन पर अनुकंपा करना है, उन पर दया करना है। जो आपसे किसी कारण से धन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से उम्र के दृष्टिकोण से आपसे बड़े हैं तो उसका करना है महता बहुमानेन, भक्तों का बड़े लोगों का बहुत सम्मान करना चाहिए। और दीना नाम जो आपसे कम है, होता है ना यहाँ पर दुनिया में बराबर, हमसे कोई बराबर ही हमसे कोई छोटा भी है तो उस पर अनुकंपा, और बराबर वालों से बड़ों को सम्मान देना है, छोटे पर कृपा करनी है, और बराबर वालों से मित्रता मैत्रया चाहे आत्मतुल्य समाज से हमसे बराबर हैं, किसी कारण से बराबर हैं तो उनसे मित्रता करनी, मित्रता मित्र मैत्रया आत्मतुल्य से यमे न नियम। और भी भगवान तो बहुत चीज बताते हैं कि और भर, लेकिन एक बात कहता है कि जब हम प्राणियों से व्यवहार करना है तो बड़े लोगों का बहुमान तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके कंजूसी नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। और गुणों में शारीरिक दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक दृष्टिकोण से हमसे कोई हे है नीच है तो उस पर दया करनी चाहिए, अनुकंपा अनुकंपा शब्द के उस पर दया करनी है। और सम्मान वालों से तुल्येषु आत्मतुल्येषु हमारे जो बराबर हैं उससे मित्रता करनी है, उसे होड़ नहीं लगाना है चाहिए कि हमारे बराबर हमको बढ़ ना जाए, उसे होड़ नहीं लगाना चाहिए। और जो दीन है उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, अरे वो उसका क्या है, उसका क्या हम तो उसे बड़े हैं, ये उपेक्षा कहते हैं। और बड़े हैं तो ईर्ष्या नहीं करनी, अरे बाबा वो तो हमसे ज़्यादा है, तो प्राय हम लोग बड़े लोगों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, छोटे लोगों को तिरस्कार करते हैं, अरे हमारे पास उसके पास क्या है, ये तिरस्कार। और बराबर वालों से राइवलरी रखते हैं कहीं हमसे ज्यादा बढ़ न जाए। तो ये तीनों न रहकर बड़ा है तो सम्मान देना है, हमसे छोटा है तो उस पर कृपा करनी है, और हमारे बराबर है तो उससे क्या करना है, बराबर वालों से मित्रता करनी चाहिए, अच्छा संबंध रखना चाहिए। मित्रता में अच्छा संबंध होता है ना, झगड़ा उसे नहीं करेंगे, मित्रता करेंगे। और बड़ा है तो दिल खोलकर उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, मान खूब उसको मान देना। तो उससे पहले 17 श्लोक में भगवान, तो वही यहाँ पर इस श्लोक में विशेष कर बात है कि द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो न मन शांति मृक्षति, हम लोगों को मन शांति नहीं प्राप्त होगी। और हम लोग शांति तो चाहते हैं सब लोग ना, कोई डिस्टर्ब हम लोग तो नहीं रहना चाहते हैं, सबकी इच्छा है, एम्बिशन है कि हम शांत रहें। तो भगवान यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं कि दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कोई प्रश्न है तो थोड़ा किसे सांप यहाँ है कहा मारते हैं दूसरे लोग मार दे, ये तो आपके, आपने नहीं ना मारा सांप को, तो नहीं मारा। मैं इस व्यासासन से नहीं कहूंगा कि आप लोग सांप मारिए चाहे बिच्छू मारिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। भले नीचे कब कोई कह देने लगे, यहाँ से कह देने लगे। देखिए तो पूरे सेंस में आप कहते हैं कि फल तोड़ने से अपराध लगता है, आप तोड़ते हैं कि नहीं? क्यों तोड़ते हैं? प्रभुपाद जी का आप तात्पर्य समझ लिए कि नहीं? तोड़ना है, आप कहते हैं कि तोड़ता, क्यों तोड़ते हैं? प्रभुपाद जी के डायरेक्ट विरुद्ध क्यों करते हैं? इसी श्लोक में ही प्रभुपाद लिखे ना, वो है तब और आगे की बात है कि हमको उसको जो पत्रम पुष्पम तोड़ना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद एकदम प्रश्न ही उठाए हैं, एकदम सीधे यही पूछे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई पेड़ साग में भी जो हो है तो उसे खाना चाहिए कि नहीं, यहाँ तो प्रभुपाद यही कहते हैं ना। तो हम तो यही ना कहते हैं, हम यह कहे कि प्रभुपाद जी का वह आशय नहीं है कि न कि तो नहीं तोड़ना चाहिए, फल पकता है तो इसीलिए पकता है, नहीं तो नहीं तोड़ेंगे तो गिर भी जाता है। यह एडिशनल है, भक्ति है कि हमें ग्रहण करने के पूर्व उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो पहले तो हम पेड़ पर तोड़ने जाते हैं, उसी समय कहें कि नहीं तो ये तो प्रभुपाद जी तो कहें कि नहीं तोड़ना ही नहीं है, तो हम वहीं आपको मना कर दिए कि तुलसी का पत्ता तोड़ना ही नहीं है, तब तो नहीं तो, तो क्रम है ना, जैसे पहले तो आप तोड़ लेते हैं तुलसी जी, पहले तोड़ लेते हैं तब ना भगवान को चढ़ाते हैं कि नहीं, कि पहले चढ़ा लेंगे तब हम तोड़ेंगे, तब पा नहीं तो तोड़ेंगे ना, हम प्रणाम। तो थोड़ा सा आगे बात बनती है ना, कि फल तोड़ने में अपराध नहीं है, अब तोड़कर खा लेने में अपराध है ना। भक्ति विनोद जी के विषय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में है, फल तो आया था ना फल। तो भक्ति विनोद जी दोषी नहीं थे ना, फल लाए थे ना घर में, अर्पित भी नहीं किए थे, तो लाने तक तो नहीं करना ना, वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तर्क दे सकते थे कि आपने भी तो अपराध किया, आपने तो फल लाया है, मैं तो खा लिया तो अपराध हो गया है, लेकिन आपने भी तोड़ कर लाया है, तो उतना तक नहीं था ना। जो यह अपराध होता है कि उसे हमें मिलता है तो भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ऐसे इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं कि है कि तो कभी हम तोड़ेंगे काटेंगे, अननेसेसरी यदि जरूरत नहीं है तो पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि जरूरत नहीं है तो कुछ लोग सुने होंगे बहुत महात्माओं के विषय में, कुछ साग वो पत्ता खाकर रहते थे, जो गिर जाता है पीला वही खाते थे। तो जो प्राप्त होता है उसको भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। हाँ, उससे काम चल सकता है, तो वही मतलब अन्य से शरीर से पत्ता ही पीला होकर गिर जाता था, वही कुछ लोग खाते थे। तो थोड़ा समय नहीं है, एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी वहाँ थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज घर देखे ना मासीबाड़ी में ऊपर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ऊपर रूम था और नीचे बरामदा में कोई फेस्टिवल था, बहुत लोग भक्त सोए हुए थे, और एक सांप आ गया फर्श पर घूम रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उपट प्रभुपाद जी वहां पर, देर के बाद क्या हुआ कि सांप घूम रहा है, अरे भाई कौन सांप को कौन मारेगा, वो धाम है मायापुर धाम, इधर उधर लोग भाग रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो कोलाहल सुने, आवाज सुने तो गए देखे क्या हो रहा है क्यों, तो उनको पता लगा कि सांप है और लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो भक्त सिद्धांत तुरंत उसे मार दे, मार मारो तो मार दिए। तो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को थोड़ा सा ऐसा लगा भाई साधु सांप को मारना। लेकिन यह लॉजिक यह है कि देखिए हमको भेद परमात्मा रूप सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन वैष्णव का शरीर महत्वपूर्ण है ना। सांप घूमे और वैष्णव काट दे मर जाए, सांप भजन करेंगे थोड़ू, वह चारों तरफ घूम रहा है वह जीवित रहे और किसी वैष्णव को काट वो मर दे, वैष्णव तो भजन करेगा तो वह वैसी कोलैप्स होना है तो सांप को मारना ही है। प्रभुपाद ही लिखे प्रहलाद महाराज के बिच्छू और सांप को मारने से साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं, प्रहलाद महाराज कहे हैं। तो इसका मतलब नहीं प्राणी की हिंसा नहीं करना है तो चलो अब मैंने अब डीटी किचन में कॉकरोच भर जाए उनको नहीं हमको मारना है। वो मैं नहीं कहना कि आपको मारना चाहिए, लेकिन सब कम से कम समझ लीजिए कि अब डीटी किचन में चारों तरफ कॉकरोच चलो घूमे फ्री चारों तरफ डीटी रूम में हमको नहीं मारना है, यह नहीं ऐसी नहीं करना है। होता है ना कभी कॉकरोच खूब उन्हें फ्रीली घूमे भाई, सभी प्राणियों का आदर करना है सम्मान करना है कुछ नहीं कर, मच्छर लोग खुश बिहार करें और एक वैष्णव जो भजन करता है काट दे मलेरिया हो जब मर जाए, इसके शरीर की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है एक वैष्णव के शरीर। मैं यह कहता हूँ कि जो इसलिए उत्साही नहीं होना चाहिए कि हम तब विशेषकर यह सुनने से लगता है तब कुछ भोग पाप करेंगे और भक्ति के हमारे प्रसाधन तो इसे काटते रहेंगे। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ब्रह्मा जी कहे हैं ना भुंजान एव आत्म कृतम विपाकम, जो सुख दुख आता है सह लेते हैं चलो प्रारंभ, और भक्ति को उसमें प्राय जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जो भक्तों पर विपत्ति देखी जाती है ना बड़े बड़े लोगों पर, वो चाहे तो भक्ति से काट सकते हैं लेकिन जैसे आप थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, जब अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा जी आए लौट के, अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना किया है कि भगवान मैंने कुछ भी भक्ति की है कुछ भी पुण्य किया है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे अतिथि ब्राह्मण इनकी रक्षा होनी चाहिए, उन्होंने अर्पित किया और दुर्वासा ऋषि की वो पूरी हो गई। तो हम थोड़ी सी स्वतंत्रता, ऐसे बहुत कुछ स्वतंत्रता नहीं होती है, तो वहां पर अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी की रक्षा के लिए अपनी भक्ति को भी दाव पर रखा। ये प्रार्थना ही साफ कहते हैं कि भगवान मैंने आप थोड़ी भी हमने कुछ हमारी भक्ति है तो उस भक्ति के और भी कहे हैं कुछ दान दिया है पुण्य है उसका अथवा इसका तो हमें दूसरों के लिए आवश्यकता थी, वो भी एक बहुत महानता है तो ऐसे करते हैं कुछ। हालांकि दूसरों के लिए तो अम्बरीश महाराज ने अपने लिए नहीं किया दूसरों के लिए किया है। तो भक्त लोग भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम तत्ते नुकंपाम सुस्मिक्षमाणम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, कृपा करते हैं उसको बहुत उत्साही नहीं होते हैं कि हम विपत्ति आदि भक्ति करेंगे काट लेंगे, ऐसे स्वेच्छा पर नहीं है कि हम चाहेंगे तो कट भी जाएगा, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रारब्ध के कर्म कैसे कैसे शुद्ध भक्ति से करता है। लेकिन फिर भी भक्त बहुत से जेनरस नहीं होते हैं अपने भक्ति को खर्च करने में, बड़ा बहुत उसके संजो कर थोड़ा बहुत सुख दुख सह लेते हैं, मान अपमान सह लेते हैं, लेकिन ठीक है फिर से। आप क्या करते हैं, कोई भक्ति में बाधा देता है तो क्या करते हैं उसको? क्या अच्छा, उनको पता लगता है कि आपने झूठ बोला है तो उनको कष्ट लगता है। दुख नहीं देना चाहिए, जैसे अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहिए कि भक्ति तो करना है, भक्ति नहीं छोड़ना है, लेकिन दुख देने को रिकमेंड नहीं किया। देखिए यहाँ भगवान आश्वास पाते हैं, अब मैं अपने न मन शांति, दूसरे से दुख देने से हमें शांति है, वो रिस्क लेना है। ठीक है, बाद में कभी। Yeah।